रश्मि भी सेट पर पहुंची। वो थोड़ी लेट थी, पर तब तक रेहान भी नहीं आया था। ये देखकर उसने चैन की सांस ली और काम में लग गई। कुछ देर बाद रेहान भी आ गया। दोनों ही काम में बिजी थे और दोनों के दिमाग में अपने दोस्त का ख्याल चल रहा था। रेहान शान के बारे में सोच रहा था और रश्मि आरवी के बारे में सोचकर परेशान थी। दोनों खोल खोए से अपना काम कर रहे थे। लंच ब्रेक होने वाला था तो रश्मि ने पास के रेस्टोरेंट का एड्रेस आरवी को मैसेज कर दिया। आरवी ने मैसेज देखा तब वो सबके साथ ही बैठी थी। फिर उसने सुभाष जी और अर्पिता जी को देखकर कहा, बड़ी माँ डैड, मुझे आपसे कुछ पूछना है। पूछो बेटा, दोनों ने एक साथ ही कहा। आरवी कुछ पल सोच में पड़ गई, फिर उसने हिचकिचाते हुए कहा, वो बड़ी माँ डैड, मैं सोच रही थी कि मैं आज रश्मि से मिलने चली जाऊँ। बहुत मन कर रहा है आज उससे मिलने का। अगर आप दोनों की इजाज़त हो तो मैं जाऊँ। बिल्कुल जाइए बेटा, इसमें पूछने वाली क्या बात है। बस कोशिश कीजिएगा कि अंशु के आने से पहले लौट आएं। अगर उनके आने पर आप उन्हें घर पर नहीं मिली तो सारे घर को सर पर उठा लेंगी। अर्पिता जी ने मुस्कुराकर उसको जाने की इजाज़त दे दी, साथ ही अपने दिल की बात भी बता दिया। उनकी बात सुनकर आरवी का चेहरा खिल उठा। उसने मुस्कुराकर कहा, आप चिंता मत कीजिए बड़ी माँ, मैं उनके आने से पहले आ जाऊँगी। एक काम कीजिएगा बेटा, आप कार से ही जाएंगी, क्योंकि पिछली बार कैब से आने पर शान बहुत नाराज़ हुए थे, तो आते वक्त अंशु को लेते आइएगा। आप उन्हें लेने जाएंगी तो आपको वहाँ देखकर बहुत खुशी होगी उन्हें। सुभाष जी ने भी उसको एक सुझाव दिया और आरवी झट से उनकी बात मान गई। आज अंशु का स्कूल में फर्स्ट डे था तो आरवी को भी उसको सरप्राइज़ देने वाला आइडिया पसंद आया। अंशु उसको देखकर सच में खुश तो बहुत होगी, यही सोचकर वो मुस्कुरा दी। दोनों ने उसको जल्दी निकलने को कहा तो वो उनसे इजाज़त लेकर गाड़ी से रश्मि की बताई जगह के लिए निकल गई। रश्मि ने अपना बैग पैक किया क्योंकि लंच हो चुका था और उसे जाना था। वो जाने के लिए जैसे ही मुड़ी, शिवम उसके सामने आकर खड़ा हो गया तो रश्मि की भौहें तन गई। उसने उसको घूरते हुए भौंचकाकर आंखों से ही सवाल किया कि क्या है, यूं उसके सामने खंभे की तरह खड़ा क्यों हो गया है। उसके सवाल को समझते हुए शिवम ने जल्दी से जवाब दिया, वो लंच ब्रेक हो गया ना। रश्मि ने एक बार फिर भौंचकाकर सवाल किया तो उसके भाव सख्त थे और वो उसको घूर से घूर रही थी, जिससे शिवम जो कहने आया था उसकी वो कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी, जुबान ही नहीं खुल रही थी। रश्मि पहले ही सुबह से परेशान था, उसकी खामोशी से वो और ज़्यादा चिढ़ गई और भड़कते हुए बोली, अब क्या मुंह में दही जमा लिया है? जब कुछ कहना ही नहीं है तो खंभे की तरह मेरा रास्ता रोके मेरे सामने किस खुशी में खड़े हो? तुम्हारे पास बहुत फालतू वक्त होगा, पर मेरा वक्त बहुत कीमती है और मुझे बहुत ज़रूरी काम से निकलना है। दिमाग पहले ही खराब है मेरा, और मत भड़काओ मुझे, वरना अपने गुस्से की आग में जलाकर भस्म कर दूंगी तुम्हें। आइंदा अगर यूं ही टाइम पास करना हो तो मेरे सामने बिल्कुल मत आना, समझे। रश्मि ने उसको अच्छे से झाड़ दिया और वहाँ से दंदनाते हुए चली गई। बेचारा शिवम छोटा सा मुँह लिए उसको जाते हुए देखता रहा। अचानक ही उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा, इसके साथ ही एक जानी पहचानी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। क्या करना चाह रहे थे आज? शिवम अब भी उसी दिशा में देखे जा रहा था जहाँ से अभी अभी रश्मि गई थी। उसने खोए हुए ही जवाब दिया, कुछ नहीं, बस साथ में लंच करने के लिए पूछने आया था, पर वो तो कहते कहते हो अचानक ही चुप हो गया और वो तुम्हारी बजाकर चली गई। एक बार फिर पीछे से आवाज़ आई और उसकी अधूरी बात उस इंसान ने पूरी कर दी। शिवम ने अब आवाज़ पर ध्यान दिया और उसे पहचानते ही उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने हड़बड़ाहट में पीछे मुड़कर देखा तो रेहान गहरी निगाहों से उसे ही देख रहा था। उसे वहां देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने बात संभालते हुए कहा, सर, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। और मैं क्या सोच रहा हूँ? रेहान ने उसको घूरते हुए भौंचका दी तो शिवम ने नज़रें चुराते हुए कहा, वो मैं तो बस यूं ही लंच करने के लिए बोलने आया था उन्हें, उनको लेकर मेरे दिल में कुछ भी नहीं है। बेटा, तुम्हारी जुबान जो कह रही है ना, उससे तुम्हारे भाव और हरकतें मेल नहीं खाते हैं। संभल जाओ, वो तीखी छुरी है, उसको संभालना तुम्हारे बस की बात नहीं। बेहतर होगा अपने लिए अपनी जैसी कोई सीधी सी लड़की ढूंढ लो, क्योंकि इस बला को मैं अपने लिए पसंद कर चुका हूँ। वैसे भी वो तुम्हारी पहुँच से बाहर है। उसकी बात सुनकर शिवम उसको आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगा तो रेहान ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए गंभीरता से कहा, मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ, दूर रहो उससे। अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो इस बार तो बस धमकी देकर दी है, अगली बार सबके सामने अपनी सैंडल से तुम्हारी आरती उतार देगी, समझे। वो चलता फिरता बम का गोला है, उससे जितना दूर रहोगे उतनी लंबी उम्र होगी तुम्हारी। फिर भी अगर तुम्हें जवानी में ही मरने का शौक चढ़ा हो तो दे देना उस आग की भट्टी में अपना हाथ, अभी बस बातों से आग बरसाई है, अगली बार तुम्हें पूरा का पूरा भस्म ही कर देगी। इतना कहकर वो उसके कंधे को थपथपाते हुए वहां से चला गया और जाते हुए मन ही मन बोला, लंच ब्रेक में ये लड़की इतनी जल्दी में कहाँ गई है? कुछ परेशान भी लग रही थी। तू भी बिल्कुल पागल है, सुबह से शान के बारे में सोचने में इतना उलझा हुआ है कि उसके तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अब जाऊं देखने की कहां गई है इतनी जल्दी में? नहीं, इंतजार करता हूँ, जब आ जाएगी तो पूछ लूंगा, अगर पीछे गया तो मुझ पर भी भड़क जाएगी। रेहान एक तरफ जाकर बैठ गया और उसके लौटने का इंतजार करने लगा। शिवम बेचारा हैरान परेशान था, उसको देखता ही रह गया। फिर नासमझी में अपना सिर हिलाते हुए बोला, साथ काम करते हैं तो लंच के लिए पूछकर ऐसा क्या गुनाह हो गया मुझसे कि पहले रश्मि मुझ पर बरस पड़ी और फिर सर मुझे धमकी देकर चले गए। उसको वजह समझ नहीं आई तो जाकर लंच करने लगा। रश्मि स्कूटी को फुल स्पीड में भगाते हुए रेस्टोरेंट पहुंची, जो शान के घर और शूटिंग प्लेस के बीच में पड़ता था, ताकि दोनों को ही परेशानी ना हो। उसको जल्दी से जल्दी आरवी से मिलना था, उससे बात करनी थी, तो उसने झट से स्कूटी पार्क की, फिर अंदर की तरफ दौड़ गई। लंच का टाइम था, वो वहाँ काफी भीड़ थी। उसने नजरें घुमाई तो सबसे कोने वाली टेबल, जो सबसे अलग थी, वहाँ बैठी आरवी पर उसकी निगाहें पड़ी और वो जल्दी से उसके पास भाग आई। फिर चेयर पर बैठते हुए बोली, सॉरी यार, तुझे इंतजार करना पड़ा। इट्स ओके, मैं तो घर से आ रही हूँ, पर तुम तो अपना काम खत्म करके आ रही हो, वैसे भी ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा मुझे। आरवी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, पर चेहरे पर परेशानी के भाव थे, जिसे रश्मि ने भी महसूस किया। अच्छा चल बता, क्या खाएगी? उसने नॉर्मल बात स्टार्ट की, पर आरवी ने इनकार करते हुए कहा, कुछ नहीं, मुझे वापस भी जाना है, अंशु को स्कूल से लेते हुए घर जाना है, तो ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास, मुझे तुझसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। हाँ तो बोलना, मैं सुन रही हूँ, रश्मि ने उसकी हथेली पर हथेली रखते हुए कहा, क्योंकि उसे आरवी घबराई हुई लग रही थी, उसने उसको सहज करना चाहा। आरवी कुछ सेकंड खामोश रही, फिर उसने धीरे से कहा, मैंने तुझसे एक बात छुपाई है। कैसी बात? रश्मि ने उसके चेहरे को गौर से देखते हुए सवाल किया, क्योंकि आरवी की घबराहट और डर देखकर उसको कुछ गलत होने का शक होने लगा था। आरवी ने उसकी हथेली के नीचे से अपनी हथेली निकाल ली, माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं, उसने अपनी हथेली से अपने पसीने को पोंछा, उसके लब हल्के से हिले, शायद कुछ कहना चाह रहे थे पर जुबान से शब्द ही बाहर नहीं निकल सके।
उसकी हालत देखकर रश्मि ने उसकी तरफ पानी का ग्लास बढ़ा दिया और उसके हाथ को थामते हुए बोली, तुझे कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, तू जानती है तू मुझसे अपने दिल की हर बात शेयर कर सकती है, बिना इस बात की परवाह किए कि मैं क्या सोचूंगी, क्योंकि मैं किसी बात पर कभी तुझे जज नहीं कर सकती। पहले पानी पी, फिर बिना घबराए मुझे बता कि क्या हुआ है, तू इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है? आरवी ने अब निगाहें उठाकर उसको देखा, उसकी आंखें आंसुओं से लबालब भरी हुई थी, जैसे बस अब रो ही पड़ेगी। उसकी ऐसी हालत देखकर रश्मि और परेशान हो गई, उसने घबराकर उसको अपने गले से लगा लिया और उसकी पीठ सहलाते हुए बोली, आरू क्या हुआ है? क्या तेरे और जीजू के बीच कुछ हुआ है? तू इतनी उदास और परेशान क्यों है? बताना यार क्या हुआ है, देख तेरी चुप्पी और आंसू मुझे डरा रहे हैं, आरू कुछ तो बोल यार। रश्मि खुद बहुत परेशान हो गई थी, आरवी की आंखें छलक आईं, उसने उसके गले से लगे हुए ही धीमी आवाज में कहा, मैंने तुम सबको धोखा दिया है, झूठ कहा है सबसे, पर मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, गलती हो गई थी मुझसे, मुझे तो कुछ याद भी नहीं, अपनी गलती सुधारने की कोशिश की थी मैंने, पर सब गलत हो गया। मैं तुझसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहती थी, पर मैं हिम्मत नहीं कर सकी तुझे कुछ भी बताने की। मुझे मिस्टर मल्होत्रा से भी कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए था, वो मुझे पहले ही धोखेबाज समझते हैं, अगर उन्हें वो सब पता चला तो वो मुझे धक्के मारकर अपनी ज़िंदगी और अपने घर से निकाल देंगे। पर शादी के वक्त मुझे होश ही नहीं था, उसके बाद उस घर में अपने अस्तित्व के लिए हर पल एक नई लड़ाई लड़नी पड़ रही थी, विहान का ख्याल मेरे दिमाग से बिल्कुल ही निकल गया। रश्मि पहले तो हैरान परेशान सी उसको अपने गले से लगाए उसकी बात सुनती रही और समझने की कोशिश करने लगी, पर जैसे ही उसके मुंह से विहान निकला, रश्मि के भाव एकदम से सख्त हो गए। उसने झटके से आरवी को खुद से अलग किया और हैरानी से बोली, विहान, ये अचानक विहान कहाँ से आ गया बीच में, और क्या छुप छुपाया है तूने मुझसे और जीजू से? वो मैं, विहान, हमारे बीच, आरवी के मुँह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे, जुबान लड़खड़ाने लगी थी। उसकी लड़खड़ाती जुबान और चेहरे से भाव देखकर रश्मि को कुछ गलत होने की आशंका होने लगी। आरवी सर झुकाए बैठी सुबक रही थी। रश्मि ने उसके चेहरे को ऊपर करते हुए घबराते हुए कहा, तेरे और उसके बीच क्या आरू? वो मुझे अपना बना चुका है, हासिल कर चुका है मुझे, आरवी ने बिफरते हुए कहा। वहीं उसकी बात रश्मि के लिए किसी सदमे से कम नहीं था, उसने अपना हाथ पीछे कर लिया और इसके साथ ही आरवी बुरी तरह रो पड़ी। रश्मि स्तब्ध सी बस उसको देखती ही रह गई, उसके कानों में आरवी की कहीं बातें गूंज रही थी। To be continued.